आज हिदायत के साथ। प्रोग्राम आज हिदायत के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि नाज़रीन आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसको रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मौजूद मेहमान गिरामी हमारे साथ होते हैं। लाइव कॉल्स के ज़रिए से आपके प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। तो आज भी हम बात करेंगे अपने कल वाले मौजू को मज़ीद तकरार करेंगे, क्योंकि उस पर कल जो है वो खासी तशनगी रह गई थी, उसके कुछ पॉइंट्स हमने कहा था कि उसके ऊपर रह गए, उनको आज जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे अपने टाइम में रहते हुए आपको जामे तरीन अपडेट्स जो है वो इससे आगाह किया जाए। तो हमारा आज का भी मौजू मुस्लिम उम्मा की मजमू सूरत हाल रहेगा और हमारा जो पूरा फोकस होगा जो अरब ममालिक के अंदर और वहाँ से लेके पाकिस्तान तक ताने बाने बुने जा रहे हैं और नई साजिशें की जा रही हैं वो क्या हैं। कल हमने उसका एक हिस्सा आपके सामने पेश किया, उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हमारे साथ इस बेहतरीन मौजू को कंटिन्यू करने के लिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इटली से जर्नलिस्ट मौलाना आबिद हुसैन साहब। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे।
तो आपके नाजरीन और सामीन की खिदमत में भी अर्ज सलाम और अदब है।
जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क़िबला, जो थोड़ी सी तबीयती गुफ्तगू हो जाए ताकि जो नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम में इस वक्त नए हमें उन्होंने ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा मालूम हो जाए कि हम इसको किस तरफ किस डायरेक्शन पे और किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो जो नई इस वक्त एक अपराइजिंग की सूरत हाल है अरब कंट्रीज़ के अंदर, अरब ममालिक के अंदर, उस वो क्या साजिश देखते हैं आप, क्या है वो मामला, क्या है?
देखें, जहाँ तक कुछ ममालिक में क्योंकि कंटिन्यूली एक एहतजाज और अवामी एक गुस्से का वो हमें नजर आ रहा है। वैसे तो एहतजाज इन लेबनान या इराक से हटकर भी हो रहे हैं, उर्दुन के अंदर भी गुज़श्ता कुछ माह में बड़े शदीद किस्म के एहतजाजात देखने में वक्फे वक्फे से नजर आ रहे हैं और ये वही मुल्क है जहाँ पे पहले एहतजाज इस तरह नहीं हुआ करते थे। टीचरों का एहतजाज बड़े शिद्दत के साथ और बड़ा पुरतशद्दुद देखने को मिला। इससे पहले जो है जिस अवामी सतह पे एहतजाज हुआ लोकल इश्यूज को लेकर, जिसमें बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट भी पहली दफा उर्दुन के शरीक हुए, इसी तरह अलजजायर में आप देख रहे हैं कि कमोबेश ऐसी सूरत हाल नजर आती है। ट्यूनिजिया बावजूद इसके कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है जिसकी वो आरजू रख रहे थे, बहरहाल गलत थी या सही थी अपनी जगह, लेकिन फिर भी वहां पे एक हमें चीजें नजर आ रही हैं। मिस्र के अंदर भी काफी एहतजाज की कॉल्स दी गई लेकिन उस अंदाज में एहतजाज सामने नहीं आया, क्योंकि मिस्र एक अहम मुल्क है अरब दुनिया के लिए और खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत रखता है और जनरल सीसी का वजूद वहां पर उनकी बका की एक तरह की जमानत के तौर पे, गारंटी के तौर पे है, तो इतना ज्यादा पनप नहीं सका। इराक में क्योंकि जाहिर है कि एक बड़े अरसे के बाद सद्दाम और उसके बाद फिर एक जो अमेरिकी वहां पर एक बराह रास्त मौजूदगी थी, एक तरह से डायरेक्ट रूलिंग वो कर रहे थे, उसके बाद फिर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ जिसने भी संभल भी नहीं पाया था कि दहशतगर्दी का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ दाइश की शक्ल में और अब जाके थोड़े से मसाइल बैठे हैं। तो अवाम अपने मसाइल की तरफ भी मुतवज्जे हो रही है और हुकूमती सतह पर भी जो खामियां हैं गवर्नमेंट की और खासकर ब्यूरोक्रेसी और इंतजामी उमूर के को लेकर, उन वो खामियां जो है बहुत ज्यादा जाहिर है कि अवाम तकलीफ महसूस कर रही है और गम गुस्से का इजहार कर रही है कि इराक एक अमीर मुल्क है और इसके बीच में जाहिर है कि एक जो इस खत्ते के पूरे इस जरखेज खत्ते के लिए एक जो बाहर की तरफ बाहर से जो एक साजिश मौजूद है जिसमें पे दर पे नाकामियां उन्हें मुसलसल तकरीबन हर फ्रंट के अंदर देखने को मिल रही हैं, यमन के उस सहरानशीन और पहाड़ी हिस्से से लेकर जो है अगर आप लेबनान और शाम के सरसब्ज और शादाब खत्ते को देखें, फिर इराक जैसे तेल के एक बड़े जखीरे को देखें, तो ये सारे तकरीबन फ्रंट के ऊपर बड़ी शिकस्त का सामना है। ना ये शिकस्त सिर्फ अस्करी हवाले से नहीं है, यानी जब कहा जाता है शिकस्त तो ये शिकस्त कोई अस्करी मैदानों की शिकस्त की या महाजों और चेकपोस्टों पे कब्जों करने और फौजियों को भगाने की बात नहीं, और स्ट्रेटेजिकली तौर पर आप पोलिटिकली भी अगर आप देखते हैं और जियो पोलिटिकल हवाले से भी अगर आप इसको देखते हैं, यानी जुग्राफियाई एतबार से भी अगर आप इसको देखेंगे, तो बहुत पहले उर्दून के बादशाह ने एक, बल्कि उनकी जबान से ये कहलवाया गया था, एक प्रोपागंडा किस्म की बात की, फिरकावराना किस्म का लफ्ज कहा गया था कि ये अगर आप खामोश रहेंगे तो एक शिया जो है जान तकमील होने जा रहा है। हालांकि गलत था, बल्कि एक मुजाहमती बिलाक का चांद तुलू होने जा रहा है, उसे ये कहना चाहिए था, जो गजा फिलस्तीन से लेकर जो है और शाम और दीगर ये तमाम लेबनान, इराक, ईरान, फिर यमन, और
मगर उसको
उम्मीद है कि
हिलाल उसी का नाम दिया गया।
जी, तो ये जो सूरत हाल थी, अब वो क्योंकि वो चांद तुलू हो चुका है, वो चांद तुलू हो चुका है, अब उसकी रोशनी से जो है इस्तेफादा करने की बात है, उसकी रोशनी से फायदा उठाने की बात है, कि जो इंशाल्लाह की ग्रेजुअली हो रहा है माजरत के साथ। तो अब जाहिर है कि ये इस सूरत हाल में जो शिकस्त खोरदा इस खत्ते का दुश्मन है, जिनके मफादात को बड़ी शदीद किस्म की जद पहुंची है, और जाहिर है कि वो आराम से तो नहीं बैठेंगे, उन्हें हर वो बहाना चाहिए जिसके जरिए से वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो अवाम एक जायज मुतालिबे को लेके कोई मुजाहरा करती है एक सिविलाइज तरीके से, तो उसको किसी और डायरेक्शन में डाल देना और उस मुजाहरे को पुरतशद्दुद बनाना और उसको जो है उसके स्लोगन को चेंज करना, उसको हाईजेक करना से लेकर जो है फिर से जो खबरें आ रही हैं, अगर ये मुसद्दका इत्तला'आत हों तो फिर बड़ी बहरहाल एक तशवीश वाली बात है कि इराक के बाद ऐसे सूबे हैं या इलाके हैं कि जहां पे फिर से कोई मलेशिया बनने जा रही है और फिर से कोई शिदत पसंद ग्रुप की तश्कील हो रही है, ट्यूटा गाड़ियां वहां फिर बांटी जा रही हैं, फिर जो है $3,000-3,000 दिए जा रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि कोई 12,000 का कोई ग्रुप तश्कील पाने जा रहा है, ये खबरें बहरहाल मीडिया में छिनके आ
अच्छा, रही है। अभी ये भी इत्तला है,
क्योंकि मुसद्दका नहीं है तो,
मगर अभी ये भी इत्तला है कि करकूक के अंदर जो है हशद शाबी ने बहुत कारी जरबे वारिद किए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उनके जो बंकर्स वगैरह थे उनको तबाह भी किया गया है, ऐसी इत्तलात हैं मीडिया के ऊपर।
जी डेफिनेटली, देखें इराक में जो बाकी मानदा ऑपरेशन का जो आखिरी हिस्सा है वो तो कंटिन्यूली जारी है, उसमें तो किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई है, वो अपने जो है मिनिमम कोलैटरल डैमेज के जरिए की पॉलिसी को अपनाए हुए बड़े आस्था से वो ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। मैं जिन यानी खबरों की बात कर रहा हूं, या अगर सही कहें तो कहें कि एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग किस्म की अफवाहों की जो मैं बात कर रहा हूं, वो उन हिस्सों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उन हिस्सों से रिलेटेड है जहां पर अमेरिकन फोर्सेस की पेनेट्रेशन बहुत ज्यादा है, या उनका वहां पे असर और रसूख बहुत ज्यादा है, या कुछ ऐसी ग्राउंड मौजूद हैं कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी के लिए वहां पे पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ग्राउंड ऑलरेडी मौजूद है, या उसकी कोई भी आइडियोलॉजिकली आप कहें या ज्योग्राफिकली आप कहें, क्योंकि ये जो इलाके हैं वो इस तरह के इलाके हैं कि यहाँ पे जो सद्दाम नवाज जो ग्रोह हैं बासी वो स्टिल वहां पे उनकी आइडियोलॉजी के साथ मौजूद हैं, और अब भी वो एक उसे अपनी एक आइडियल शख्सियत के तौर पे समझते हैं कुछ हिस्सा, तो ऐसे जगहों पे ग्राउंड बड़ा आसानी से मिल जाता है, बाहर की जो कुवतें होती हैं आराम के साथ किया जा सकता है। आपको पता है कि मशरिक वस्ता में कम से कम, वैसे तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन मशरिक वस्ता में कम से कम सबसे बड़ा जो सफारतखाना है अमरीका का वो इराक में है, और जाहिर है कि वो इतना बड़ा सफारतखाना सिर्फ सफारती और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए तो नहीं बनाया गया है, डेफिनेटली ये तो एक ऐसी चीज है कि कोई बच्चा भी समझ सकता है, उस सफारत के कुछ ना कुछ काम तो वहां है, और मेरा नहीं ख्याल कि ट्रिलियंस जो कहते हैं कि हमने सरमाया लगाया है इराक में चेंजिंग के लिए वगैरह वगैरह, तो जाहिर है कि वो आसानी के साथ तो किसी चीज को नहीं मानेंगे, और जो जो ये जो ग्रुप्स हैं जितने भी दहशतगर्द और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अलकायदा है या मुख्तलिफ शक्लें इनकी हैं, कोई भी किसी भी शक्ल में हो पीछे आइडियोलॉजी है, कि जाहिर है कि अब ये जो ग्रुप्स हैं मुमकिन है कि इनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी हो, लेकिन ये एक्सपायरी डेट इन इलाकों में किसी और शक्ल और सूरत में आ सकते हैं, कॉम्प्रेसरों की शक्ल में आ सकता है। आपको याद होगा कि 80 की दहाई में उससे पहले पान अरबिज्म की मूवमेंट बड़ी तेजी से चली थी, और अरबिज्म बिल्कुल इस तरह फैली थी कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उस वक्त समझी जा रही थी, बहुत तेजी के साथ फैलाई गई। मिस्र इनका हेडक्वार्टर रहा और ये पूरे अरब खिते में फैल गया, और ये पान अरबिज्म जो है असल में मुस्लिम उम्मा और कुरानी और इस्लामी यूनिटी के नारे के मुकाबले में एक तरह से इसको लाया गया था। तो नेशनलिज्म के जो नारे हैं या इस तरह की जो और चीजें हो सकती हैं, अभी आप देख रहे हैं कि इराक के अंदर जो शरपसंद अनासिर हैं उनके स्लोगन्स को आप देख लें कि वो क्या नारे लगा रहे हैं। तो अगर आप उनके नारों को देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज लगेगा कि वो अराकीज्म की बात ज्यादा करने लगे हैं, या बाज जगहों पे वो अरबीज्म की बात करते हैं। हालांकि ये जो अनासिर हैं ये बहुत ही मुट्ठी भर भी नहीं है, शायद मुश्किल से 100-150 से ज्यादा इनकी तैदाद ना बने, लेकिन जाहिर है इन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। मखसूस जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, मुझे बड़ी हैरानगी होती रही है बाज औकात, क्योंकि ट्विटर अरब दुनिया में काफी मशहूर है। हम देखते हैं ट्विटर के अंदर की बाज ऐसी फेक चीजें आ जाती हैं, बड़ी शख्सियत के नाम पे बयानात तक दिए जाते हैं। और
जी
हेलो,
जी 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 जी
माजरत जी, तो इस तरह के ये जो मसाइल हैं ये तो रहते हैं, जाहिर है कि एक माशरे का हिस्सा है। कुरान मजीद कहता है कि इंसान हमेशा एक इम्तिहान में होता है। इंसान से मुराद यहाँ पे सिर्फ एक फर्द नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी है, एक इंसानी सोसाइटी इम्तिहान में होती है, कौमें इम्तिहान में होती हैं,
सही
माशरे इम्तिहान में होते हैं। तो ये जो खत्ते हैं जाहिर है यहाँ पर भी एक तरह से वो इम्तिहान से गुजर रहे, एक एक्सपीरियंस भी उनका हो रहा है। इराक में हम देखते हैं कि पब्लिक जो निकली थी तो वो तो बहुत उनके जायज मुतालिबात के ऊपर बात कर रहे थे। जैसे अभी ईरान में अवाम ने तेल की कीमतों को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हुई थी अवाम के दरमियान, अलबत्ता इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उस की अनाउंसमेंट बड़े गैर मुनासिब अंदाज से की गई, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं ना कि एक सोशल समाजी जो एक धचका लगा आवाम को, और उन्हें सोचा कि शायद कोई एकदम से जो है मार्केट ऊपर शूट कर गई, क्योंकि विदाउट किसी उसके जो है अनाउंसमेंट की गई थी, और ये स्ट्रेटेजिक मेरे ख्याल में एक बड़ी गलती थी रूहानी हुकूमत की तरफ से। उनको पहले आवाम को एतमाद पे लेना चाहिए था, और उसके बारे में जैसा कि होता रहा है माजी में, अगर वो टीवी टॉक कर लेते या पब्लिक से डायरेक्ट मुखातब हो जाते, या उससे पहले वो दो तीन
थोड़ा सा जहन
गैदरिंग
साजी करते हैं।
ये पब्लिक गैदरिंग में वो बातचीत कर चुके थे बड़ी डिटेल से अपनी पॉलिसीज के बारे में और इकोनॉमिकल जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से, और बड़ी अच्छी बातें कर चुके थे। तो उसमें भी इसको अगर डिटेल में समझा देते कि वो क्या करने जा रहे हैं, कि उसमें अवाम का अपना फायदा है और तेल की स्मगलिंग को वो रोकना चाह रहे हैं, तेल जो कि क्योंकि इराक में मेरे ख्याल में टेक्निकली अगर हम इस चीज को लेकर बात करें तो दो तीन पॉइंट्स बड़े अहम हैं। इराक में बहुत ज्यादा तेल समगल होता है हमसाया ममालिक में गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि तेल पेट्रोल पंप से आप चाहे तो बैरल भर लें या चाहे तो गैलन भर लें या टैंकर भर लें, और ये समगल होता है। इसलिए जो है एक नॉर्मली एक इंसान जो ऑयल यूज करता है एक महीने के अंदर, उसको पेश नजर रखकर उन्होंने ऑयल के ऊपर एक कंट्रोल किया और ऐसे कार्ड का इजरा कर दिया कि उस कार्ड के जरिए से आप फॉर एग्जांपल कहें कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर है तो वो महीने में फॉर एग्जांपल 100 लीटर तेल ले सकता है, अगर 100 से अबो तेल ले लेगा तो वो उस कीमत पे ले लेगा जिस कीमत का भी अनाउंसमेंट किया गया, जो मेरे ख्याल में less than $1 है, शायद $0.5 भी नहीं है पाकिस्तानी रुपए में, वो 39 रुपए बन जाते हैं जो कीमत बढ़ाई गई है, और
सही
जो नॉर्मल कीमत है वो मेरे ख्याल में 13 से 15 रुपए भी नहीं बनती। तो कहा कि अगर आप उससे ज्यादा तेल लेना चाह रहे हैं तो इस दैट्स मीन ये है कि वो आपकी जरूरत से ज्यादा का तेल है, और अगर आप जरूरत से ज्यादा का तेल लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको उस कीमत पे लेना होगा जो जो हमने तयन की और ये एक अच्छी हिकमत अमली है। इसका फायदा ये होगा कि कई मिलियंस डॉलर जो है पब्लिक अकाउंट में आएंगे। पब्लिक अकाउंट समझिए कि पब्लिक को या तो सब्सिडी दी जाएगी, चीजों के ऊपर सब्सिडाइज किया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, खासकर मुतवस्सित और निचले तबके को माशरे के, या फिर उनको कैश पेमेंट किया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी फंड कहें जो भी नाम दे दें उसको, एक तरह से कैश पेमेंट उनके अकाउंट में। और अभी इतफाक की बात है कि कल रात गए मैं देख रहा था न्यूज में कि अनाउंसमेंट हो रही थी कि पहली जो इंस्टॉलमेंट है या आप उसको पहली जो किस्त है पब्लिक के लिए, वो इतने मिलियंस लोगों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं।
एक
ये जो
करोड़ एक
पैसे हैं ये
करोड़ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के तकरीबन खानदानों की तादाद बताइए जिनको जो है वो जिनको ये पैसे दिए जाएंगे।
जी, तो ये मेरे ख्याल में अब पब्लिक की खुद समझ में भी आने लगी है। जो इस सारे जो इश्यूज के अंदर जो एक चीज हमें देखने को मिली, एक तो ये थी कि अनाउंसमेंट सही तरीके से नहीं हुई, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई और मार्केट शूट कर गई। यानी एक आदमी जो रात को यूजली बस का फर्ज करें कि वो प्राइवेट टैक्सी यूज करता है, और अगर हंड्रेड तूमान में वो रोज ऑफिस जाता है और अगली सुबह वो वही टैक्सी ड्राइवर उसको कहता है कि आप 300 दे देंगे, तो जाहिर है कि एक शॉकिंग बात है। इसी तरह जो है मार्केट में एक चीज जो पहले फर्ज करें कि अगर 50 तुमान की मिल रही थी और वो सुबह उठ के जाता है बंदा मार्केट में और कहता है जी 150 में मिलेगी, तो ये जो था इससे मार्केट शूट कर गई, लेकिन जल्दी कंट्रोल किया गया। और यहाँ से पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया, जो कि ईरान में एहतजाज होता रहता है, वैसे सारा साल कभी ना कभी कोई एहतजाज होता है। कई बार हम जैसे लोग, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड हैं और हम अपडेटेड रहने की कोशिश करते हैं, तो हम तो कभी किसी कारखाने से खबर आती है जी कि कारखाने के मजदूरों ने अपने मालिक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि उसने जो है वो जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं किए, और कभी ये सुनने को नहीं मिला कि वो प्रोटेस्ट जो है आग लगाया, तोड़ा फोड़ा, जलाया, गोली चली, मारा जो है नकाबपोश आए, या जिन्होंने जो है मास्क पहने हुए हैं वो मखसूस बंदे आए, टोले आए, जत्थे आए, ऐसी कभी हमने नहीं सुनी। लेकिन क्योंकि ये एक पूरे ईरान के अंदर एक प्रोटेस्ट था, और इस प्रोटेस्ट को जाहिर है कि मखसूस लोग, जैसे इराक में हुआ, इसी तरह से नकाबपोश या चेहरे को बंद किए हुए मास्क पहने हुए लोग
खुफिया
जिनके
खुफिया
हाथों
हाथ
में वेपन्स भी थे, और जी हाँ जिनके हाथों में वेपन्स भी थे और बड़े ऑटोमेटिक किस्म के असलहे को लेकर, जैसे कि फुटेजेस अब आने भी लगी हैं जो सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी आ रही हैं, तो वो मखसूस लोगों ने आए, और उनका काम मुतालिबा करना या प्रोटेस्ट करना नहीं था, बल्कि वो जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ करना था। ये 2 दिन मेरे ख्याल में, पहले दिन तो काफी शदीद रिएक्ट था आवाम की तरफ से भी, और उसी अवामी जो रिएक्ट है उसके अंदर इन्होंने जो कुछ वो कर सकते थे जलाओ गिराओ का वो कर लिया। दूसरे दिन से फिर आवाम की समझ में आने लगा, और आज तो जाहिर है कि आवाम मिलियंस के हिसाब से मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकली, उन बलवाइयों और शरपसंदों के खिलाफ सड़कों पर निकली, और गवर्नमेंट की पॉलिसी की तायीद में, और खास करके जब सुप्रीम जो कयादत है ईरान में वली फकीह की तरफ से भी जब ये बात आ गई कि इसका जो फैसला है वो मुल्क की रियासत के 3 अहम इदारों ने और सुतून ने किया है, और क्योंकि मैं खुद इस मसले के ऊपर कोई ऐसी राय नहीं रखता था, फैसला जो है इंतजामी उमूर और गवर्नमेंट का है, तो लिहाजा कहा कि मेरे ख्याल में एक मुनासिब फैसला है, तकरीबन इस तरह का जो है बयान था। तो उसके बाद पब्लिक समझ में आ गई कि जब जो है हमारे मुखलिस और हमारे जो हमसे ज्यादा हमारे लिए तड़पने वाली शख्सियत, यानी आयतुल्लाह अलउज़्मा सैयद अली खामेनाई हफिजहुल्लाह, जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सही कह रहे हैं,
यानी उसको
एक वली
कंट्रोल
खुदा जब ये
आप ये कह रहे हैं उसको कंट्रोल कर लिया गया है पूरी तरह से।
जी बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। आज तो ये था कि 3-4 शहरों में, जिन शहरों में ज्यादा शरपसंदों ने शरारत की थी, वहां पे मिलियंस के हिसाब से आवाम सड़कों पे थी और वो शरपसंदों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और रिवायती
अच्छा
जो ईरान के
जो
नारे हैं
जो
पूरा
शरपसंद
करने
थे
का।
जिनकी फुटेज सीसीटीवी कैमरों ने महफूज की हैं, उस बारे में कुछ इत्तलात अभी मंजर आम पे आना शुरू हुई है या नहीं, कि वो उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं या नहीं?
मेरे ख्याल में जैसे कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर से जो पुलिस चीफ ने जो बयान दिए हैं उससे तो जो ये चीजें सामने आ रही हैं कि गिरफ्तारियां काफी सारी हो चुकी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि जरा माहौल थम जाए, और उनकी जो फर्स्ट जो तहकीकात होती है इब्तदाई वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में चीजें सामने आएंगी
अच्छा
और
यहाँ
क्लियर हो
पर
जाएगा कि
के पीछे कौन था। यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिली, थोड़ा सा पीछे आते हैं जहाँ से इराक़ के अंदर कुछ मुनज़्ज़म गुरों को सामने लाया गया और शुरू करवाया गया। वहाँ पर ये कहा गया कि इसके अंदर सऊदियों से ज़्यादा अमारात का अमल दखल है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए, कॉलर को भी मैं शामिल कर लूँ पहले। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाह
वालेकुम अस्सलाम मुर्शिद भाई, इबला
जनाब।
साहब आपको भी सलाम हो तो भैया अली मदद।
वालेकुम
बिस्मिल्लाह
सलाम और आली मदद।
कितना बहुत खूबसूरत अंदाज में आप तबसरा कर रहे हैं। बात सिर्फ एक छोटी सी है, फिर मैं सवाल भी पूछूंगा आपसे। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक दावा हुआ था इस इनकलाब के मुतल्लिक कि ये ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, आज माशाल्लाह 40 साल से ऊपर हो गए हैं और ये इनकलाब कामयाबी की तरफ गामजन है। लेकिन अब वो जो अल्फाज उन्होंने कहे थे, वो अल्फाज उनको रड़क रहे हैं उनकी आंखों में, गले में, जहनों में, कि जो हम कह चुके थे वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा था कि जिसको चाहो, जिस वक्त चाहो, जहाँ चाहो उसका तख्ता उठा दो और अपनी मर्जी के लोग ले आओ। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है कि इसमें उनकी हर जो बात थी वो नाकाम हुई, हर स्कीम नाकाम हुई, हर सोच आके यहाँ पे खत्म हो जाती है उनकी, और वो नाकामी की वजह से अब भी उन्होंने वो सिलसिला जारी रखा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे हम, जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि चोर सन लगाता है, अब वो सन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सन आप मतलब समझते होंगे, सन उसे कहते हैं कि चोर पीछे से दीवार तोड़ के या दीवार में
ठीक
सलाम
है
करके शुरू करता है, इस तरीके से अब सन लगा लगा के कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इस इनकलाब की जो बात कामयाबी है उसको रोका जाए। लेकिन बात यह है कि पहले तुम्हारा अकीदा है कि जिस पे इमाम जमाना का हाथ हो वो कभी नाकाम नहीं होता, फिर उनको मुखलसमी है, दीन के लिए बात कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये निकला कि पहले ईरान अकेला था, आज ईरान के साथ पूरे इलाके के तमाम ममालिक हैं
सही
और उनकी पॉलिसी कामयाब
बहुत
है,
खूब ठीक
इसलिए वहां पे नाकामी है ये। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है किबला, कि हमने ये देखना है कि जैसे कल इराक में हुआ, वहां पे हुआ बहुत तशद्दुद हुआ, पुरजोर नज़ारे हुए और वहां पे भी यही लोग आए थे, इन्होंने, लोगों ने ये सिलसिला शुरू करवाया था। इतना कुछ करने के बावजूद, 40-50 लाख लोग हमारे मरवाने के बावजूद, अभी भी हम लोग ये नहीं समझ पाए कि हमारे साथ वाला जो है वो किस अंदाज में रहता है, किस अंदाज में करता है, क्या सोच है उसकी, क्या वो चाहता है, ये हम लोग अपने तौर पे, पब्लिक के तौर पे नहीं ये नोट कर सकते। और अगर ऐसी कोई हरकत देख रहे हैं, मिसाल ये है कि हम जब
ठीक
यहाँ
है
यूरोप में,
सवाल आ गया आपका ठीक
एक
है
मिनट जरा, जहाँ मैं यूरोप में जब हम रहते हैं, या मुझे पता है कि मैं जर्मनी था तो मैं 2 दफा गली से गुजरा था, तो वहाँ पुलिस आ गई, पूछा क्या हुआ, वो जी फोन आया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मुझे बताना पड़ा कि मैं एड्रेस ढूंढ रहा हूँ। तो क्या हम लोग ये माशरा नहीं बना सकते इस किस्म का, कि हम लोग जो हैं ऐसे लोगों को नजर रखते हुए, इन पे कड़ी नजर रखें और अपने तौर पे मुल्क की मोहब्बत को देख कर जाहिर
ठीक है
करते हुए ऐसे लोगों की निशानदेही करें, लेकिन ये लोग हम लोग नहीं करते, क्या वजह है? एक तो ये बता दें कि इसकी क्या वजह है, और क्या ये डरते हैं, या क्या वजह है कि ये किसी इस
ठीक है
मामले में आने को पसंद नहीं करते कि मुल्क की खातर हम कुर्बानी दे रहे हैं और इस किस्म के लोगों को पकड़वाया जाए,
ठीक है
ये
नकवी साहब
क्यों नहीं होता, ये माशरा क्यों नहीं पैदा कर सके, इस पे आप जवाब दें, मेहरबानी होगी आपकी।
जी क़िबला बिस्मिल्लाह
देखें, इराक का जो मसला है ना, वहाँ पे हमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पब्लिकली जो हो सकती हैं, वो ये हैं कि इराक जाहिर है कि एक सिविलाइज जो प्रोसेस है इराक में माशरती एतबार से, वो एक तजुर्बे से वो गुजर रहा है माशरा, इसलिए कि इराक में कभी जमहूरियत नहीं रही या कभी ऐसा कोई टाइम नहीं रहा कि इराकी अपनी आजादी के साथ अपने मुतालिबात पर बात करें, जहां जिन्होंने बात की तो वो आज कब्रों में हैं और खानदानों के खानदान कब्रों में नजर आ रहे हैं, जिनमें उलमा और मुश्तहिदीन की बड़ी तादाद है और आले हकीम से लेके आले सदर तक और शहीद बाकरु सदर जैसी अजीम शख्सियात आज देख रहे हैं कि वो उनकी तो कब्र भी बड़ी देर के बाद जाके पता चला कि कहाँ पे है, खुफिया रखी गई। तो इराक ऐसे अराकी माशरा एक ऐसी सूरत हाल से गुजरा है और उसके बाद जब उनको कुदरत ने कुछ ऐसी सामान कर दिया कि वह मकर हुआ मकर अल्लाह, इराक पर कब्जे के लिए सद्दाम को हटाया गया, लेकिन कुदरत ने ऐसा खेल खेला, अराकी अराकियों ने होशियारी दिखाई, जो एक मुज़ाहमती कि इराक के अंदर जो है वो नहीं हो पाया जो वो चाहते थे, कि इराक को सद्दाम से निकाल के अपने कब्जे में ले ले, जो कि सद्दाम उनका अपना ही एक छोटा सा टट्टू था और अरेकार था। तो इराकी मुआशरे में एहतजाज हो रहा हो अवाम की तरफ से, तो भी बाज़ औक़ात हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी अवामी रद्द अमल के तौर पर, जो जिससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त अराकी एक तजुर्बे से गुजर रहे
बिल्कुल
हैं
ऐसे ही आप
और ये उन्हें हक हासिल है कि वो बाज औकात बाज चीजें ऐसी करें। लेकिन जो हमारा जो फोकस है वो ये है कि दो तीन पॉइंट्स बड़े अहम हैं इराक के अंदर।
सही
आपने देखा कि ईरान में जब ये बलवाई शरपसंद अवाम के बीच में घुस के आए, तो जो एक अहम चीज हुई वो ये हुई कि टॉप की लीडरशिप से लेकर पब्लिक, जो आम पब्लिक है, वो सड़कों पे आई। आज आपने देखा कि मिलियंस के हिसाब से लोग निकले, कल शायद मुमकिन है इस आने वाले जुमे को शायद पूरा इराक सड़क पे हो, पूरा ईरान माजरत के साथ सड़क पे निकलाए। हमें ईरान में ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमें ईरान में इराक के अंदर भी हमें नजर आने की तवक्को है इंशाल्लाह। वहां पर जो है लीडरशिप और कयादत है वो समझती है, वो उन्हें मालूम है कि इराकी जो माशरती साख्त है उस साख के अंदर कितनी कैपेसिटी और कितनी गुंजाइशात मौजूद हैं। उसी के अतबार से आप देखते हैं कि मरजियत की तरफ से जो मरहलावार बयान आ रहे हैं उनके नुमाइंदे के जरिए से, खासकर जो करबला में उनके नुमाइंदे होते हैं उनके जरिए से जो बयान आ रहे हैं वो इंतहाई निब्बे तुले और मौके की मुनासिबत से और ग्राउंड रियालिटीज को सामने रखकर
बिल्कुल ऐसे
बड़े बड़े एहतियात के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज मुमकिन है कि कोई भी ऐसा कदम जो दुश्मन को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि इराकी जो मजहबी क्यादत है वो बेहतरीन तरीके से जानती है, मरजहियत है, हजरत आयतुल्लाह अलउज़मा सईद अली सिस्तानी है, वो समझते हैं कि उन्हें किस वक्त किस तरह के जो है बयानात और किस तरह के इकदामात करने चाहिए, क्योंकि इराकी सोसाइटी में इतनी कैपेसिटी नहीं है जो दूसरी मुकाबले में हमसाया मुल्क ईरान में। ईरान एक बड़े एक्सपीरियंस से गुजरा, जैसे
गुजर
अभी
चुका है।
कॉलर भी कह रहे थे कि 40 साल, 40 साल इंकलाब का गुजरा है, उससे पहले एक बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस से वो गुजरे हैं। आपने ये देखा होगा कि ईरान के बादशाहों में ये जुरअत नहीं रही है कि वो किसी मुश्तहिदी को कत्ल करें, लेकिन सद्दाम मलून ने ये जुरअत की और मुश्तहिदीन के उन्होंने जो है इतने ज्यादा कत्ल किए कि आज आप देखते हैं वादी सलाम से लेकर मौला अमीर उलमोमिनीन के रोजे नजफ अशरफ तक आप देखते हैं कि कितने मजारात सजे हुए हैं मुश्तदीन और उलमा और बड़े बड़ी कीमती शख्सियात को सद्दाम ने शहीद कर दिया। तो इराकी मुआशरा एक जाहिर इराकी मुहाजिर रहे हैं बैरून मुल्क, जो इराकी जो अच्छे जहीन और फतीन लोग थे, थिंक टैंक्स थे, वो हिजरत करनी पड़ी उनको या वो शहीद कर दिए गए। तो जाहिर है कि एक माशरा जो एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरता है, एक तरबियत से गुजरता है हर चीज में, वो आराकी या माशरा अब वो तजुर्बा कर रहा है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। तो बाज वहां पे ऐसे स्लोगन अगर हमें नजर आ रहे हैं जो बलवाई आवाम के मुंह में डाल रहे हैं, या कोई ऐसा बैनर हमें नजर आता है, या कोई ऐसी हरकत हमें नजर आती है, तो ये चंद अफराद हैं जिनकी तरफ से ये चीजें की जा रही हैं। अवाम इसका हिस्सा नहीं है और न ही जो है इराक इसका हिस्सा है। वही जो हमें ईरान में नजर आया कि जलाओ गिराओ और तोड़ फोड़ और मुकदस और हमारी जो मजहबी अहम शख्सियात है उनकी तोहीन करना, ये चंद ही मुट्ठी भर लोग ही होते हैं। अगर आप देखेंगे अगले हफ्ते में आपको पता चलेगा कि वो कितने लोग थे जो पकड़े गए हैं, मुश्किल से 100 भी नहीं बनेंगे वो अफराद। हर शहर में 10-20 थे, 1000 के मोब में या 200 के मोब में 10 बंदे घुसे और 200 सिविलाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर 10 ने आग लगा दी। आग लगा किसी लाखों अफराद की जरूरत तो नहीं होती, शरपसंदी के लिए एक आदमी काफी होता है, एक आदमी जो है पेट्रोल छिड़कता है, आग लगा देता है,
अच्छा
शरपसंदी कर
इराक
देता है
इराक में
और
भी
फिर बायपा
गिरफ्तार,
मीडिया उठा के दिखा देता है कि
इराक में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। जो
जी।
तस्वीरें आई हैं जो सीसीटीवी कैमरों ने महफूज की थी, जिसमें वो गले में पट्टे डाले हुए हैं, ऑम्निशन उनके, हैवी ऑम्निशन उनके पास है, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। जब ही तो वो इस नतीजे पर पहुंचे जो मैं सवाल कर रहा था कॉलर के आने से पहले, कि जब वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि उन्होंने कहा कि इसमें अमारात का हाथ ज्यादा है। यकीनन उन्होंने उनसे तफ्तीश के
देखिए,
अमल से गुजरे।
मैं आपको, अगर हम इस मौजू पे डीपली चले जाएं तो मैं तो ईरानी इराकी किसी ऑफिशियल ने, चाहे वो मजहबी ऑफिशियल हैं या इराकी पार्लियामेंट से रिलेटेड या हुकूमत से कोई भी है, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर ने मजाक उड़ा दिया उस रेशन न्यूज एजेंसी की, जब उन्होंने सवाल किया कि क्या इन प्रोटेस्ट के पीछे कोई बैरूनी हाथ है, तो उन्होंने मजाक उड़ा के कहा कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और कोई हमारा बैरूनी हाथ नहीं है। ये कहा कि प्रोटेस्टर्स हैं और आवाम हैं और ये अपने मुतालिबात कर रहे हैं। हाँ, इनके बीच में शरपसंद अनासिर भी मौजूद हैं जो शरारत कर रहे हैं। तो ऑफिशियली तौर पर ऐसी कोई स्टेटमेंट हमें इराकी ऑफिशियल्स की तरफ से नजर नहीं आती। हाँ, वो अफराद जो माशरे में, जैसे मैं आपको बता दूंगा कि जो हश्र शाबी के जो जिम्मेदार लोग हैं, या जो है और इस तरह के यहाँ पर जो पॉलिटिकल और रिलीजियस जो शख्सियात हैं, उन्होंने बैरूनी हाथ की बात शुरू से कर ली, और ये इसमें कोई दो राय भी नहीं है और किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि बैरूनी हाथ नहीं था, बिल्कुल था। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग चल रहे थे या जो ट्रेंड चल रहा था उस वक्त,
80% वो आउट ऑफ द कंट्री था, वो इराक से बाहर से हो रहा था, लीड कर रहे थे उसको।
इराक से बाहर वो ऑपरेट हो रहा था। अच्छा, इराक से बाहर मिलियंस के हिसाब से इराकी रहते हैं। हमने बैरून मुल्क भी प्रोटेस्टर्स की इजहार यकजहती के लिए प्रोटेस्ट देखा है। यूरोप के अंदर बहुत सारे ममालिक में इराकी एहतजाज करने वालों की हिमायत में एहतजाज हमने देखा है, और हमने वहाँ फंड इकट्ठा करते हुए भी मैंने खुद मुशाहिदा किया है, जेनिवा से लेकर जो है बोन तक और यहाँ रोम तक, हमने ये चीजें देखी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जो सोशल मीडिया था वो एक्चुअली था कहाँ से? क्या वो बाहर बैठे इराकी चला रहे थे? बाहर बैठे इराकी भी नहीं चला रहे थे, वो ये गल्फ कंट्रीज के अंदर से चल रहे थे, ज्यादातर वहां से चलाई जा रही थी। जो मखसूस आईडीज हैं, जिसे कुछ अर्सा पहले ट्विटर ने ही ऐलान किया था कि बहुत सारी फेक आईडीज को हमने
ब्लॉक
कैंसिल
किया।
कर दिया है, क्योंकि ये आईडीज बनाई गई हैं जो एक आदमी ने 10 10 20 20 आईडीज बनाई हैं। इनका काम ऐसे ही मौके में इन आईडीज को इस्तेमाल करना है, तो कंपेन चलाना है। तो ये इस तरह के आईडीज थी और इस तरह के लोग थे जो कर रहे थे।
सही। तो अभी जो एक नया वार, जो एक बुराई का महवर है, एक इस्तेमार का जो एक मंबा है पूरी उसका, एक शर का, जिसे हम एक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया हम कहते हैं, हम अमरीकी आवाम को नहीं कहते, हम आवाम हर जगह के सादे होते हैं, मासूम होते हैं, मगर जो हुकूमतें होती हैं बाज़ उसके अंदर भी जो बाशिद्दत पसंद अनासिर होते हैं, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के अंदर बैठे हुए, जो गाये बगाए सिर्फ आग भड़काने का नाम के लेते हैं, जंग की बात करते हैं, धमकी की बात करते हैं, और एक तरफ से मुज़ाकरात का भी हाथ बढ़ाते हैं, ये जो एक साफ धोखा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि एक तरफ बेड़ा भेजें और दूसरी तरफ कहें कि जी हम तो हमदर्द हैं, ये जो मुजाहिरीन हम इनके साथ हैं, इनके मुतालिबात के साथ हैं, क्या ये दोस्त हो सकते हैं उनके?
डेफिनेटली ये तो देखें, ये मेरे ख्याल में अब खत्ते में कोई सिवाय चंद जान बूझ के बेवकूफ बनने वाले अफराद के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है खत्ते में। हाँ, वो अफराद हैं जिनके बारे में हमें कुरान मजीद ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि इनके शऊर के ऊपर ठप्पे लग चुके हैं, यानी ये इनके दिल के कान, इनके इनके दिन जो शऊर है, अकल है, फहम फरासत है, इनके दिन की जो आंखें हैं, इनके ऊपर ऐसी स्टेम्स ये लग चुकी हैं कि ये हकीकत को, 2 फीट के फासले पर बैठी हकीकत को भी नहीं देख पाते हैं, और 2 + 2 = 4 की तरह जो सच्चाई उनके उनकी अकल के सामने मौजूद है उसे भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि 4 की जगह पे 5 समझते हैं और या 3 समझते हैं। उनके अलावा खित्ते में कोई ऐसा नहीं बचा है जो इस किस्म की जो बातें हैं उसकी उसमें आ जाए और उसके उसके ऊपर भरोसा करे और यकीन करे। आप देखें, ग्राउंड में देख लेते हैं, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपने इत्तेहादियों को तो नहीं डिफेंस कर पाते हैं। आप इसी से अंदाजा लग रही, यमन की जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं, आप जाके मुजाकरात पे आ रहे हैं, वो जो 5 साल पहले यमनी कह रहे थे आओ भाई बैठ के हल करें मसले को, अब आना पड़ा हमें इसके ऊपर। अगर ये सच्चे होते और अपने इनके साथ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मुजाकरात करता है, इनके साथ जो है उठ के बैठता है, कॉफी का कप लेता है, तस्वीर फोटो सेशन करता है, अगर ये उसके हामी होते और सच्चे दिल से हिमायत कर रहे होते, तो फिर ये तो इनके इत्तेहादी हैं, जिनको तो वो अपने
जी
इलेक्शन कंपेन के अंदर सुबह शाम उनकी इंसल्ट करते हुए रुकते नहीं है। आप मेरे ख्याल में आप कॉल लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं।
सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम। मैं किबला साहब का बहुत मशहूर हूँ कि मैं इनकी बात को बातों में गुफ्तगू में मुफल हुआ हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अपना अजहार कर लूँ आपकी कजूत। तो बात यह है नागा साहब कि चंद कलामात और फिक सवाल, वो भी शॉर्ट एंड स्वीट चंद कलामात।
बिस्मिल्लाह जज़ाकअल्लाह।
तो मुसलमानों की जो इस वक्त हालत ज़ार हो चुकी है या हालत ज़ार है, अल्लाह ताला अपना सुचिरा फरमाए। तागूती और समाजी साम्राज्य ताकतों ने इनमें जो इंतजार का बीज बोया है, इसके सबब मुसलमानों को तकसीम करके रख दिया है। इस वक्त सब मुसलमान यारो या बे यारो मददगार है सवाए ईरान के। मैं हकीकत बयान करूंगा चंद और अल्फाज में सवाल कर दूंगा, सवाल करने की जरूरत करूंगा। मेरा सवाल ये है किबला से कि ये जो बातें सब हो रही हैं, जो कुछ दुनिया में हो रहा है, दौरे फितन है और नफसा नफसी आलम है, और लेकिन इनको कौन एक जगह पर लाएगा?
ठीक है,
बहुत शुक्रिया, आपको सलामत रखे।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क़िबला, जो ये तमाम चीज़ें हैं, इसमें जो एक हम एक एलिमेंट देखते हैं, जो एक जिसको पहले जैसे आपने कहा कि हिलाल उशी कहा गया, हालांकि वो एक मकावमत का हिलाल था, परवरदिगार ने उसको हिलाल उशी को बद्र मुनीर में जो है वो तब्दील कर दिया। क्या उसमें इन्होंने दूरियां पैदा करने की कोशिश की है? जो ममालिक करीब आ गए थे, जो मकावमत की जंजीर के अंदर हैं, उसको इन्होंने तोड़ने की अपनी तौर से कोशिश की, उसमें ये क्या इनको कोई कामयाबी नसीब हुई है या नहीं?
देखिए, कोशिशें हर तरफ से रही हैं और जाहिर है कि स्टिल कोशिशें तो हो रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। दुश्मन कभी अपनी दुश्मनी से रुकता नहीं है और न वो रुक सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि हम यानी उम्मत जो है कितनी उसको उस दुश्मनी का सामना करती है और उस साजिश को समझती है। आप जानते हैं कि हम कोई ऐसी बात करने नहीं जा रहे, वैसे भी माह रबीउल अव्वल है और इस वक्त हफ्ते वहादत का सिलसिला जारी है, हम ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चंद हकाइक की तरफ इशारा जरूरी है। आप देखते हैं कि अब जो है जहां से फिरका वारियत को फैलाया गया बाकायदा प्लानिंग के तहत एक साम्राज्य की जरूरत को पेश नजर रखकर और फिरके ईजाद किए गए, बाकायदा एक आइडियोलॉजी ईजाद की गई और वो आइडियोलॉजी की बुनियाद नफरत पर और मुसलमानों के अंदर नफरत के फैलाव पे ज्यादा जोर था और सारी तवज्जो और फोकस और सरमाया उसी के ऊपर लगता रहा पिछले कई दहाइयों से। अब वो खुद ही अनाउंस कर रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं जी कि हाँ जी हमने ये काम किया था, ये आइडियोलॉजी हमने बिल्ड की, बनाई और फैलाई, पेट्रो फाइनेंस यानी जो पेट्रो फाइनेंस किया इसके ऊपर और दौलत खर्च की, इसलिए कि ये इस वक्त इनकी जरूरत थी, जो हमारे बड़े हैं उनकी जरूरत थी, जिनकी वजह से हमारा इख्तदार चलता है और हमारी मसनद शाही बरकरार रहती है, उनकी जरूरत उस बात पर थी और आज वो जरूरत खत्म हो चुकी है। बल्कि अब थोड़े से हमें लिबरल बनने और थोड़े से आदत ख्याल बनने की जरूरत पेश आ रही है, तो हम उस तरफ जाने वाले हैं और ग्रेजुअली स्टार्ट हो चुकी हैं चीजें और उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो हुआ है काम, जो नफरतें फैलाई गई हैं, वो नफरतें इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होंगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमें बिनवाने एक इंसान के और बिनवाने एक मखलूक के अल्लाह के और बिनवाने एक मुसलमान के, हमें जहन में रखना चाहिए कि दुनिया हमारी आजमाइश की जगह है। ये आजमाइश जाती तौर पर नहीं, शुरू में मैंने अर्ज किया था कि माशरे आजमाइश में जाते हैं, कौमें आजमाइश में जाती हैं, ममालिक आजमाइश में जाते हैं, तो मैं हम उम्मत के हर फर्द की आजमाइश है कि वो कैसे इन तमाम हादिसात व वाकयात को दुरुस्त तरीके से समझता है और किस तरह इसके बीच में सच्चाई को लेके आता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल देते हैं, आपके टीवी चैनल हैं, जैसे आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रोग्राम के जो है टाइटल बदल सकते हैं, आप टॉपिक बदल सकते हैं और आप भी वही काम कर सकते हैं जो बहुत से और चैनल कर रहे हैं, और स्टिल अभी के अभी है कि उनकी कोई मार्केट अब नहीं रही है, उसके बावजूद वो बातें अब भी बेच रहे हैं और खरीदार ढूंढ रहे हैं कि कोई कायम कोई बंदा मिल जाए जिससे मैं फिरका वाराना बात करूं, नफरत की बात करूं, जिससे मैं हेड स्पीच करूं और उस हेड स्पीच का कोई खरीदार आ जाए, मार्केट में उसकी बोली लगे, ये भी तो हो सकता था। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप स्टिल जो है अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, आप स्टिल जो है लोगों को होशियार करने, बेदार करने, खतरात से आगाह करने और दोस्त दुश्मन की पहचान कराने की बात कर रहे हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहे, फर्ज करें कि अगर ऐसे चैनल ना हो, ये आवाजें ना उठें और हम सुमन बुकमन रहें खामोशी के साथ, बस एक तरफ से दुश्मन ही उसकी साजिश आती रहे, मीडिया उसी का रहे, प्रोपगंडा उसी का रहे, बातें उसी की रहें, मेंबर उसके हाथ में हो, बातें उसी की तरफ से आए, किताब उसकी तरफ से आए और उसी को हम अथेंटिक समझे तो डेफिनेटली वो कामयाब होंगे, हम नाकाम होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बहुत बदली हुई है, बहुत ही तब्दीली हम महसूस कर रहे हैं, बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। हाँ जाहिर है कि दारुल दुनिया दार इम्तिहान भी है, दार इब्तिला भी है, यहाँ आजमाइश है, हम में से हर एक की आजमाइश भी है और मिनहैस कौम भी मिनहैस उम्मत भी आजमाइश में है। और शिया मकतब फिक्र, मैं इसलिए नहीं कि मैं शिया हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, शिया मकतब फिक्र का ये एक दुरे इम्तियाज है। ठीक है कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान अददी एतबार से हम कम अदद रखते हैं, तशय्यो अददी एतबार से कम, लेकिन इंजन की हैसियत रखती है, शऊर फिक्र अकल सकाफत कल्चर और होशारी बेदारी दुश्मन दोस्त की शिनाख्त, हमेशा ये अहले बैत और खानदान इस्मत तहारत और अल्लाह के हबीब की खानदान का तुरे इम्तियाज रहा है। आप नाजुल बलागा से उठा के देखें, नाजुल बलागा की सबसे बड़ी शरह जो लिखी है वो अहले सुन्नत आलिम दीन ने लिखी है और वो दुनिया में मशहूर भी हो गई, इब्ने अबी हदीद मोतजली मोतजिला जो अफकार अकायद के अतबार से मोतजिला खुद को कहलाता था उन्होंने लिखी और मशहूर है आज तक, उसे एक अच्छी शरह के तौर पर माना जाता है और भी बहुत सारे उलमाए कराम ने लिखी। तो कहने का मतलब कि हम इसके अंदर एक इंजन की हैसियत रखते हैं और इंजन की हैसियत रखने की वजह से जरूरी जरूरी समझते हैं कि चीजों को लेके आगे बढ़े। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, हमारे मुस्लिम दुनिया के अंदर एक मूवमेंट उठी थी, बहुत अच्छी मूवमेंट थी, बाद में डीट्रैक हो गई, गलत रास्ते पे चली गई, वो उस पर हम डिस्कस नहीं करते फिलहाल, वो इख्वानुल मुस्लिमीन थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज पढ़ रहा था कि साम्राज्य की किसी न्यूज एजेंसी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि ईरान अब भी जो है इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ ताल्लुकात बनाए हुए है और उनको दोबारा रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहा है,
बल्कि गालिबन उन्होंने
मतलब
ये भी
ईरान को क्या पड़ी है,
उन्होंने गालिबन ये भी कहा कि तुर्की में इज्तिमा है उनका और इस टाइप की अफवाहें उन्होंने फैलाने की कोशिश की है।
मतलब अगर फर्ज करते हैं कि अगर हम दो मिनट के लिए ये सोचते हैं कि ईरान अगर इख्वान मुस्लिमीन को दोबारा वो रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश, या उनको कह रहा है जी कि आप अपने असल जो जब ये उठे थे इख्वान मुस्लिमीन एक अच्छे स्लोगन के साथ, जिस वक्त सईद कुतुब मोहम्मद कुतुब जैसे लोग होते थे, ससन बन्ना जैसे लोग होते थे, वो अपनी फिक्र में रहते हुए वो ऐसी बात करते थे जो उम्मत के फायदे में होती थी, जो उम्मत की यूनिटी की बात होती थी, उम्मत के दरमियान मोहब्बत और भाईचारेगी की बात होती थी, जो अपने पटरी से उतर गए बाद में इख्वान मुस्लिमीन, खासकर मुर्सी के दौर में, तो जब इनको इतने अरसे के बाद स्ट्रगल के बाद इख्तदार मिला तो होना तो ये चाहिए था कि मुर्सी साहब वही स्लोगन लेके आते, यूनिटी की बात करते, ये मुजाहमती ब्लॉक की बात करते, ये बात करते कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हल्ले हल्ला गुल्ला बलवाई तशद्दुद दहशतगर्द ग्रुप इनसे अपने आप को डिस्टेंस बना लेते,
मगर शेख हसन शाहता को शहीद कर दिया उल्टा।
जी हाँ, शेख हसन शाहता एक जाहिर है एक अलमिया है हमारे लिए, इससे इसके पीछे हमें एक शख्स की शहादत, दुरुस्त है कि एक शख्स का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, लेकिन एक शख्स की शहादत से ज्यादा जो अहम तरीन चीज, शहादत के पीछे जो आइडियोलॉजी है, किस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वो शहादत हुई, ये इंतहाई खतरनाक है उम्मत के लिए, उम्मत को टुकड़े करने वाली बात है, तबाह वो बर्बाद करने वाली बात है। आप कभी ऐसी चीज जो है जो शिया क्यादत और आला लीडरशिप है उससे नहीं देखेंगे। आयतुल्ला सिस्तानी इराक में है तो जब देखा कि दाइश का फनामना आ रहा है सामने और ये दहशतगर्द ग्रुप आ रहा है, उन्होंने खुद को एक मकतबे फिक्र के साथ अटैच किया है, तो उस वक्त फौरन एक बयान दिया कि देखें दाइश के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है, किसी मकतबे फिक्र के खिलाफ नहीं, और जिस मकतबे फिक्र की बात हो रही है हमारे अहले सुन्नत भाई हमारे नफ्स हैं, भाई नहीं है बल्कि हमारे नफ्स और जान है। अब ईरान में इसी तरह देखते हैं इमाम खुमैनी से लेकर वली फकीह मौजूदा जो है रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह उज़्मा सईद अली खामनाई तक, वो किस तरह जो है मुखातब करते हैं उम्मत मुस्लिमा को, फिर कवराना बात वहां पर नजर नहीं आएगी आपको कभी। लेकिन हम मुकाबले में ये भी तो तवक्को रखनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा को, ये हक हासिल है, अल अजहर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी बात आनी चाहिए, मदीना यूनिवर्सिटी से तवक्को रखते हैं जहाँ खाना काबा है, जहाँ रोजे रसूल है, जन्नतुल बकी जैसे हमारी मुकद्दसात वहां पर है, मरकज है हमारे लिए, हम उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, वहां से भी तो ऐसी आवाज आ जाए, वहां से जो भी आवाज आई है वो हमेशा तफरीके की आवाज आई है, नफरत की आवाज आई है, कुफर के फतवे आए हैं, ये तलख हकीकत रही है हमारी जो है, इंशाल्लाह कि अब ये एक्सपायर हो रही है, ये जो है एक्सपायरी डेट आ चुकी है इसकी,
एक्सपायर हो
और
जाए।
खुद जी हाँ अब ये वो इसकी मार्केट नहीं रही, इक्का दुक्का कहें पर कुछ सादा किस्म के इंसानों के दरमियान कुछ लोग अपनी प्रोडक्ट्स नफरत की बेचते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी जो मार्केट थी वो खत्म होती जा रही है इस वक्त, तो कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, लिहाजा हम समझते हैं कि ये एक बेदारी का वक्त है और कामयाबी का वक्त है। मुजाहमती ब्लाक ने ग्राउंड में और इसी तरह सियासत में और इकोनॉमी में भी बहुत तेजी से, अब इकोनॉमी हमारे पास अब इतना वक्त नहीं है कि किसी दिन हम इकोनॉमी के प्लान्स के ऊपर बात करें कि फ्यूचर होने क्या जा रहा है,
इंशाल्लाह
क्या वजह है कि अमेरिका साउथ एशिया के अंदर इंडिया को इतना पुशअप कर रहा है और दीगर साम्राज्य कुवतें भी इतनी ज्यादा उसको शेह दे रही हैं, मोदी जो कि इसी अमेरिका में और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में बैन किए जा चुके थे जब इन्होंने किलिंग की थी वहां पर, तो इसको इनको इनकी एंट्री बैन हो चुकी थी, आज वो प्राइम मिनिस्टर बना है और
अच्छा यहाँ पर आप देखिए कश्मीर कश्मीर को लॉकडाउन कश्मीर को लॉकडाउन किए हुए एक टाइम हो गया, वहाँ पर जो जुल्म और सतम का बाजार गर्म है, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स जो पहले बैन था अब उसके ऊपर नवाजिशात की बारिश हो रही है, और जो वो जुल्म कश्मीर के अंदर कर रहे हैं उसके ऊपर सबने आंखें बंद की हुई हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे, कश्मीर के हवाले से क्या देखते हैं आप, कश्मीरियों की जहदोजहद को किस अंदाज में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं?
देखिए दो चीजें बहुत अहम हैं, एक है कि कश्मीरी खुद अपनी जद्दोजहद में कभी जो है सुस्ती ना दिखाएं, ये तो वाजह है कि कश्मीरी कभी सुस्ती नहीं दिखाएंगे, वो अपनी वतन के लिए पिछले 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, और अब डिक्शनरी कुर्बानी की डिक्शनरी में कोई ऐसा हिस्सा बचता नहीं है कि जिस जो कश्मीर में कश्मीरियों ने नहीं दी हो, और इसी तरह दूसरी तरफ आलम इंसानियत है, उम्मत मुस्लिमा है, यहाँ पर फिर देखें फिर अफसोस करना पड़ता है कि हमारे जो अमीर ममालिक हैं जो मिलियंस ट्रिलियंस की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अरबों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अगर चाहें तो दबाव बढ़ा सकते हैं, कम मिनिमम काम तो ये हो सकता है ना कि दबाव बढ़ाए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं वहां पर, प्रोजेक्ट इंडिया के साथ खत्म करने
इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और नए इन्वेस्टमेंट हुजूर इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट्स तो नेक्स्ट लेवल पे बात होगी, सिर्फ हिंदुस्तान का लाखों करोड़ों अफराद इन ममालिक में काम करता है, अगर दबाव बढ़ाते और इनको वापस भेजने की बात करते तो कश्मीर क्या बाबरी मस्जिद का भी फैसला मुसलमानों के हक में हो सकता था, मगर मजाल है जो एक लफ्ज भी मुसलमानों की हिमायत में और जो है उस मरकज के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं मगर मुसलमानों की हिमायत में एक लफ्ज़ जो है वो नहीं आज तक कहा, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो फलस्तीन हो चाहे रोहिंग्या हो, आपके सामने है इमदाद कर रहे हैं, 2 अरब दे दिए, 20 अरब दे दिए, मगर जो है वो इसराइल के हमलों को आगे बढ़ के रोकने की बात नहीं करते, वो मुस्लिम इत्तेहाद किस लिए बनाया था, वो क्या कर रहा है, ये तमाम चीज़ें दुनिया के सामने है। बहरहाल अभी हम कश्मीर पर रुकेंगे, फलस्तीन पर थोड़ी देर में बात करेंगे, तो कश्मीर का मामला अब जो मोदी के सामने दो चीज़ें हैं कि जो मरकज़ है मुसलमानों का जो वहाँ पर बैठे हुए लोग वो ही मुसलमानों से वफादार नहीं हैं, उनके हक़ की बात नहीं करते, तो फिर आप मोदी जैसे से क्या तवक्को करेंगे?
देखे कहते हैं कि एक अच्छा हुक्मरान वो होता है जो अपनी रियासत के अमन व अमान को बरकरार रखे, और अमन व अमान की बरकरारी के लिए अहम तरीन चीज ये होती कि उस रियासत के अंदर जुल्म ना हो और इंसाफ हो सब हर रियासती शहरी के साथ। मौला कायनात तामीरुल मोमिनीन का भी ये फरमान है और अहादीस भी मौजूद हैं कि रियासतें अगर रियासतों में जुल्म सितम होगा तो रियासतें ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगी, जो इस वक्त मोदी ने किया है वहां पर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है बल्कि इंडिया के अंदर भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स बन रहे हैं इन्हें हम देखते हैं कि अब हम मजहब के नाम पे बात नहीं करना चाहते लेकिन ग्रुपों की हकीकत यह है कि इस वक्त आरएसएस तो एक अब वो आरएसएस जैसे अब तो दसियों ग्रुप वहां पर बने हैं, गाय के रखवालों के नाम पर गोरक्षक जिनको कहते हैं, जानो बंदरों के रखवाले या जय माता जी के नारों के रखवाले कि हर किसी को मजबूर करें कि वो ऐसे नारे लगाएं जो किसी खास जो है मजहब से या दीन से ताल्लुक रखते हैं, और फिर उन लोगों को मॉब की शक्ल में आना, मुख्तलिफ डंडे बरदार फोर्सेस को लेके आना, लोगों को पकड़ के उनके सड़कों पर बैठ के अकायद की तफ्तीश करना, ये तो बहुत टीमें बनी है जो लोगों के अकायद कंकालती फिरती है और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो ये जो सूरत हाल है, अगर इस सूरत हाल का जो नेचुरल हमें जो प्रोसेस नजर आ रहा है उसका नतीजा ये नजर आता है कि खुद जो हिंदुस्तान है अगर उससे मोदी मुखलिस है तो उनको कम से कम अपनी रियासत का तो सोचना चाहिए। ये जो कुछ उसके सोसाइटी के अंदर
मगर
हो
मगर
रहा
ये
है
ना
वो
मगर ये
जिंदा रहने
हिंदुस्तान का असल
चलेगी।
चेहरा नहीं है। मोदी जो है, जब हमारी वहाँ बात होती है मुख्तलिफ जो वहाँ की शख्सियात हैं, चाहे वो मज़हबी शख्सियात हों या समाजी शख्सियात हों, जर्नलिस्ट हों, वो यही कहते हैं कि ये जो मोदी हुकूमत है ये हिंदुस्तान का चेहरा नहीं है। ये इन्होंने ये यहाँ ला कर बिठाया गया है, इनसे काम कराए जा रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम उम्मा को एक इस्तेमार ट्रीट कर रहा है बिल्कुल इसी तरह। मगर ये हिंदुस्तान का फ्यूचर नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पर हमेशा से दूसरी कौमें तमाम एक एक भाईचारा है और मिलकर रहती हैं और रहेंगे। ये एक वक्ती एक क्राइसिस है जिसको वो ये समझते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए मैं अर्ज कर दूं कि जिन का ख्याल ये है कि ये एक वक्ती एक लहर है या एक ऐसा चेहरा है जो हिंदुस्तान की जरूरत के पेश नजर टेम्परेरी तौर पे आया है, मेरा ख्याल है कि ये बात इतनी ज्यादा सच्ची नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सोसाइटी को दो हिस्सों दो जगहों पे दिखाने की कोशिश हो रही है। एक वो सोसाइटी इंडिया का जो हिंदुस्तान का मीडिया उनकी फिल्म इंडस्ट्री उनके ड्रामे और ये चीजें दिखा रहे हैं जो कि हकीकत से दूर है, दूसरी तरफ हमें वो चीजें नजर आती हैं जो उनके माशरे में हो रही हैं। फर्ज करते हैं कि अगर मोदी एक लहर है जिसने टेम्परेरी तौर पे आना है और गुजर के चला जाना है, एक आंधी की तरह आया और उसने माशरे में कुछ भूंचाल पैदा किया और चले गए, अगर ये बात होती तो आप देखते हैं कि ये सेकंड टाइम इलेक्शन हुए हैं और मोदी की जो पॉलिसीज हैं उनकी हिमायत सोसाइटी के अंदर से हिमायत में ज्यादा आवाजें उठती हैं, पब्लिक उठती है, मुखालिफत में या उसको एक लॉजिकल तरीके से डिस्कस करने वाले लोगों की कितनी तादाद हमें नजर आती है। अगर आप उनकी जो है मीडिया जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे लेकर आप पॉलिटिशियंस को देखें, इवन अपोजिशन जमातों को देखें, वो क्रिटिसाइज करते हैं तो किसी और पहलू से, लेकिन जो हिंदुत्ववाद नजरिया है यानी एक हिंदू रियासत बनाने का जो नजरिया है उसकी मुखालिफत करते हुए हमें इतनी खुलकर तो कोई बड़ी शख्सियत नजर नहीं आती। हाँ अकलियतें मुखालिफत कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का नजरिया कोई इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखता है मोदी से, अगर हिस्टोरिकली तौर पर हम जाके चेक कर लें कांग्रेस को ही देख लें तो आप 1900 या आप देखें कि 1952 में इसी कश्मीर के अंदर ये जो चढ़ाई की गई थी तो कांग्रेस का दौर था, 98 में दीगर जो है मुख्तलिफ अदवार के अंदर हम चेक करते हैं कांग्रेस में कोई इतना बड़ा बहुत ज्यादा नहीं थे। हिंदुत्व एक ऐसा नारा है, आप ये हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है मोदी ने दाइश की जो सोच थी उसे अपने मखसूस नजरियात और मजहबी गिलाफ चढ़ाकर लोगों के दरमियान फैलाया है और जिसकी वजह से ये आरएसएस जैसे ग्रुप वहां पर आ रहे हैं, बजरंग दल जैसे लोग आ रहे
सही।
हैं,
तो
ग्रुप
कश्मीर
पनप रहे
कश्मीर
हैं,
कश्मीर का
गोरख
क्या
क्षेत्र
देखते
जैसे
हैं?
ग्रुप पनप रहे हैं।
कश्मीर का क्या देखते हैं? कश्मीर का मुस्तकबिल किधर जाता है वो देखते हैं? क्योंकि वहाँ से जो लॉकडाउन की कैफियत है उसको वो नरम करने को तैयार नहीं है अभी।
इसमें कोई शक नहीं है, ये दुनिया की तारीख बताती है कि हर हुर्रियत पसंद ने आखिरकार हुर्रियत और आजादी हासिल की है। नेल्सन मंडेला से लेकर आप खुद यूरोप के अंदर देखें, यूरोप के आप कुरुने वुस्ता या मिडिल एजेस के जमानों से आप यहाँ की शहनशाहियत पापाइयत के अदवार को देख लें, एशिया को देख लें, पाकिस्तान का वजूद इस बात की गवाह है कि बिलाखरा जिद्दोजहद रंग लाती है। हाँ जिद्दोजहद जारी रखनी पड़ती है, कुर्बानियां दे, ये बात दुरुस्त है। लॉकडाउन ही जो अभी 100 से ज्यादा दिन हो गए हैं लॉकडाउन जारी है, इसका मतलब ही यही है कि आपने एक काम कर दिया और अब ये है कि उस काम को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। ये मोदी की इस वक्त सूरत हाल है, अपनी ताकत से बड़ा वजन वो उठा चुका है, अब वो वजन वो उनके खुद ऊपर गिर रहा है। अगर आप समझते हैं कि कश्मीरी आपके आपकी पॉलिसीज के हामी हैं और खुश हैं और आप वहां पर दूध की नहरें बहाने जा रहे हैं तो आप लॉकडाउन खत्म कीजिए और आप देख लीजिए, पब्लिक को आपने बंद किया हुआ है, बड़ा जेल बना दिया है पूरे कश्मीर को, वहां पर इतनी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स वहां पर पब्लिक के लिए नजर आ रही है, तो जरा लॉकडाउन हटा दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। आप कॉल मेरे ख्याल में
जी, कॉलर माय साथ, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम मौसी भाई, अली अस्सलाम मदद
जी, अली अस्सलाम और अली मदद, बिस्मिल्लाह जी।
ये किबला साहब आपकी खिदमत में भी मेरा बहुत बहुत सलाम, और या अली अस्सलाम मदद, पाक परवरदगार आपकी
तौफीकात में इजाफा
फरमाए, के मौसी भाई आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप उम्मत का दर्द लिए हर रोज बैठते हैं, लेकिन अफसोस होता है इस उम्मत के ऊपर जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि कश्मीर के मसले पे बात हुई और बहुत सी बातें हुई। तो किबला साहब मेरी गुजारिश यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुल्क था, है और रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि रियासत के अंदर तो अगर मजहबी तहरीक शुरू की जाए, जिसको हम कहेंगे नहीं जी ये मुसलमानों का मुल्क है, तो वहाँ जो लोग रहते हैं जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई हैं, बुद्ध हैं, जो रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो वहाँ जो गैर मुल्की लोग, मैं गैर मुल्कियों की बात करूंगा, वहाँ अपने जात के नाम पे तंजीमें भेज के रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करवाते हैं और इस्लाम और दीन के नाम पे जुल्म और सितम करते हैं, तो क्या किबला साहब हमारी कौम का ये फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी रियासत की आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं दोनों मुल्कों से, क्या जे के उसके शाम मुकाबले में चीन भी हो, तो क्या जिस जिसके कंट्रोल के अंदर जो जो हमारा हिस्सा है अगर हम मांगते हैं तो कौन सी ज्यादती हम करते हैं किबला साहब? अगर हम पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान मांगते हैं, या हिंदुस्तान से वादी मांगते हैं, या चाइना से सियाचिन मांगते हैं, तो क्या गलती करते हैं हम अपनी रियासत की वहदत चाहते हैं, इस रियासत के अंदर हर वो बसने वाला कश्मीरी है चाहे जैसे जिस मर्जी से उसका तल्लक हो, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, इसमें कोई इस्लाम या किस कोई है, क्योंकि रियासत के अंदर तो मंदिर भी हैं, वो भी हम मजबूत देखना चाहते हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मस्जिदें भी हैं, इमाम बारगाहें भी हैं, लेकिन अगर इस्लाम के नाम पे ये जंग लड़ी जाए तो क्या हम फतह पा सकते हैं? खुदा हाफिज, या अली अस्सलाम मदद।
बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला जजाकल्ला जी क़िबला, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया कि उसका
तायुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखें जब जब पाकिस्तान में मूवमेंट चली और मुसलमानों ने बरसगीर के एक आजाद रियासत मांगा, तो वो बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ये नहीं कहा, एक लफ्ज भी कोई नहीं दिखा सकता बानी पाकिस्तान की जिसमें ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुसलमान या दीगर मजाहिब के लोग या उनकी मुकदसात या उनकी इबादतगाहें नहीं रह सकती, वो नहीं जी सकते। आज भी पाकिस्तान में गैर दीगर मजाहिब के लोग रहते हैं, उनकी इबादतगाहें भी हैं, सब कुछ वहाँ आजादी के साथ मौजूद है। इसी तरह कश्मीरियों को हक हासिल है। देखें ये अप्रैल गालिबन 1948 का टाइम था कि यूएनओ के अंदर बाकायदा कई करारदादे पास इस पूरे तरह रेफरेंडम कराया जाए, और ये इस रेफरेंडम से इनकार आज तक 70 साल में भारत करता आया है। पाकिस्तान ने तो कभी इस रेफरेंडम से इनकार नहीं किया, पाकिस्तान तो आज भी तैयार है अगर रेफरेंडम कराना चाहते हैं पूरे खित्ते के अंदर, जो भी मुतनाजा इलाका है, जहां पे भी डिस्प्यूट इलाके का जो है वो पूरा उतरता फिट आ जाता है, वहां पे पाकिस्तान आज भी तैयार है। लद्दाख की बात करें, करगिल की बात करें, कश्मीर की बात करें, या जो है इस हवाले से क्या देखते हैं आप, इसके ऊपर काफी सोशल मीडिया के ऊपर भी आवाज उठ रही है। अब आते हैं जो जो हमारे भाई जिन्होंने फोन किया, मैं एग्री करता हूँ उस बात से। देखे मेरा मेरा ताल्लुक भी उसी खित्ते से है, लेकिन मैं खित्ते से ताल्लुक होने की वजह से बात नहीं कर रहा, बल्कि वो जो सच्चाई है उसे मैं बयान करना चाह रहा हूँ। देखें कि मैंने ये बात नहीं कही, वहां रहने वाले शहरियों को हक हासिल है कि वो अपना फैसला खुद करें, जब तक कानूनी तौर पर बैनुल-अक़वामी मियारात के मुताबिक उनका फैसला नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान के लोग खुद उस खित्ते को डोगरा से आजाद कराने के बाद अपनी मर्जी के साथ पाकिस्तान के साथ उन्होंने इल्हाक किया, इसलिए उसका मुहिम अक्सरियत थी, उस अक्सरियत ने आज तक जो है इसी इल्हाक को बरकरार रखा हुआ है, और वो पाकिस्तान को अपना वतन समझते हैं और अपने वतन के परचम पे मरना चाहते हैं और उसी में दफन होना चाहते हैं। ये एक ऐसी अटल हकीकत है जो वहां मौजूद केटू पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची दिखाई देती है ये हकीकत। लिहाजा भारत कभी भी यही सूरत हाल कश्मीर में होगी। मुमकिन है कि हमारे कुछ कश्मीरी भाई मुख्तलिफ राय रखते हों, इसमें कोई उनको हक हासिल है और रखना भी चाहिए, लेकिन कश्मीरियों की अक्सरियत अगर आज भी रेफरेंडम कराया जाए, आज भी वहां पे आजादाना तौर पर एक पोल हो जाए और कहे जी कि आपने करना क्या है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कश्मीरी चाहे वो जम्मू कश्मीर के हो, लद्दाख करगिल में हो, वो अपना फैसला खुद करेंगे और यकीनन वो जिस तरह का भी फैसला करेंगे उसे दुनिया को कबूल करना होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस फैसले से जो फरार अख्तियार कर रहा है वो भारत है। आप काल लेना चाह रहे हैं?
सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम मौसी भाई, आले सलाम मदद। मौसी भाई आपकी इजाजत से मैं किबला साहब से छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ?
बिस्मिल्लाह की इजाजत से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
किबला साहब मैं आपकी बात की मुखालफत नहीं करता जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपने बात की, तो किबला साहब आपकी खिदमत में मेरा सवाल है कि बाबा जान की हिस्ट्री आप पढ़े कि उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और माहयार को जेल में डाल दिया गया, हमारे एक सदीकी साहब है उनको जेल में डाल दिया गया, क्या वो पाकिस्तानी है या कश्मीरी है? अगर वो अपनी आजादी या अपने हकूक की बात करते हैं तो वो इंडिया की जेल में नहीं है। हम इससे इनकार नहीं करते कि गिलगितियों ने या बल्तिस्तान ने पाकिस्तान को अपना वतन माना है, तो आज तक उनको हकूक क्यों नहीं दिए गए? किबला साहब मैं आपकी बात की मुखालफत नहीं करूंगा, मुझे ये दो तीन सवाल के जवाब चाहिए। खुदा हाफिज, अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम हक परस्त हैं, हम हुसैनी हैं, हम हक बात करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम हमारे सर माथे पे, लेकिन सियासी चक्रे जो हो रही है ना, बकाऊ माल है जो जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है या एजेंसियां करती हैं उसके खिलाफ तो हर जगह आवाज बुलंद होती है। किबला साहब खुदा हाफिज, या अली अस्सलाम।
ठीक है जी, बात करते हैं इसमें जनाब जी। किबला
बहरहाल इन्होंने कुछ वाकयात की तरफ या कुछ अफराद के बारे में बात किया। देखें ये इंतजामी जो मसाइल होते हैं ये दुनिया के हर मुल्क में होते हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क ये पसंद नहीं करता है कि उसके अमन अमान और उसके अंदर जो एक पुरसकून माशरा है उसके सुकून को खराब किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। इंतजामी हवाले से बाज़ चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी होती हैं, बाज़ चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की इलाकों की आबादी में अगर दो अफराद अगर कोई ऐसी बात करते हैं और उनकी इस बात से अगर माशरे में अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो रियासत को ये हक होना चाहिए कि वो इंतजामी उमूर को हैंडल करे। लेकिन
अच्छा यहाँ पर इनके इनके सवाल से
जमहूरियत की बात करते हैं,
इनका सवाल जो है ना क़िबला, आप रियासत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट रूल के तहत चलाई जा रही है, जो जिस तरह से उन्होंने 370 और 370A को उन्होंने इन्वाइट किया पाकिस्तान, इसको जो है वो अभी तक उन्होंने शहरियत नहीं दी है यहाँ, मगर गिलगिती और बल्तिस्तान के जो अवाम मुहिब वतन हैं और उसको अपना मुल्क तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान कहता है जब पूरे कश्मीर का फैसला होगा तो आपका भी फैसला हो जाएगा। बहरहाल जो है वो, मगर यहाँ पर जब बात करते हैं तो उनकी बात से जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो रियासत को बाकायदा पूरी तरह से रियासत तस्लीम नहीं कर रहे कि जब तक आप उनको पूरे हकूक ना दे दें। आप जो बात कर रहे हैं वो आप वैसे तो रियासत सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं।
तो इस बात के दो पहलू हैं। एक मरतबा ये है कि वहां की आवाम क्या चाहती है, एक मरतबा ये है कि जो वो चाहती है वो कितना पॉसिबल है, मुमकिन है। ये दो हमें दो हिस्सों पे बात करें, इसके दो पहलू पे बात करें। वहां की आवाम अगर हम 100% कोई ना भी कहना चाहे, मैं उनकी रिस्पेक्ट के तौर पर 99.99% आवाम चाहती है, वो खुद को पाकिस्तानी समझती है, उनका जीना मरना उठना बैठना सब अपने वतन के साथ है जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है।
सही।
मुमकिन है कि कुछ एक से दो अफराद की राय मुख्तलिफ भी इसमें पाई जाती हो, जाहिर है हर माशरे के अंदर होते हैं। आप और भी तो खितों में देखते हैं पाकिस्तान में कि कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की चीजें रखते हैं, चाहे उसके पीछे अवामिल और असबाब और चीजें जो भी हों उससे कतई नजर और उससे हटकर अगर हम सोचें। दूसरी तरफ ये है कि जो वो चाहते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज है, सिचुएशन कैसी है, कब तक पॉसिबिलिटीज है, ये एक दूसरा पहलू है इस बात का, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं।
ठीक है, कॉल को शामिल करते हैं।
इंटरनेशनल कानून है, ग्राउंड रियलिटीज है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंतजामी मामलात होते हैं, पूरे खत्ते का मसला है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देखकर आगे बढ़ना होता है।
ठीक है,
तो लिहाजा हमें हम एक ही बात के दोनों पहलू को हमें देख के चलना चाहिए।
ठीक है, कॉलर हमारे साथ, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।
जी वालेकुम सलाम मोदी भाई, माफी चाहता हूँ किबला साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि गिलगित के अंदर दो या तीन बंदे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है किबला साहब कि पाकिस्तान उसको अपना सूबा क्यों नहीं बना देता वहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। हम मानते हैं, मैं मानता हूँ कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो उनको पाकिस्तान के पूरे हकूक क्यों नहीं दिए जा रहे किबला साहब, मेरा सवाल ये है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि पूरी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दो बंदे हैं, तो इसके मैं इतफाक नहीं कर सकता कि दो बंदे अगर आजादी की बात करते हैं तो ये नाइंसाफी होगी किबला साहब, क्योंकि हम मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कश्मीरी लोग रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल 84,471 मरबा मील की आजादी चाहते हैं किबला साहब। मैंने बार बार कहा पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, मैं आपकी दिली तौर पे माशाल्लाह इज्जत करता हूँ, लेकिन ये जो बात है कि 2% बंदे, अगर कोई बंदा आजादी की बात करता है तो वह रियासत पाकिस्तान उसको 50 साल के लिए जेल में दे देता है, तो ये कौन सा कानून है, कहाँ से ये कानून आया किबला साहब। मेरा सवाल ये है कि अगर उसको अपना सूबा बनाना चाहता है तो 72 साल से गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा नहीं बना सका, तो आने वाले कितने सालों में बनाएगा, ये सवाल है।
ठीक है,
खुदा हाफिज़। या अली लतामर
मौलाना मदद जी, किबला बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो जाए।
देखें ये तो जाहिर है कि मैंने अर्ज किया कि हमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से, कवानीन के अतबार से अवाम की ख्वाहिश और उनकी चीज अपनी जगह पर दुरुस्त, लेकिन ये कि दूसरी तरफ हमें ये भी तो देखना है कि ज्योग्राफिकली एतबार से और हिस्टोरिकली एतबार से फिर इंटरनेशनल जो कवानीन है एक रियासत को सब के चीजों को पेश नजर रख कर चलना होता है। और मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त किसी चीज की कमी नहीं, हाँ जो विफाक के अंदर नुमाइंदगी की बात हो रही है, ये नुमाइंदगी का जो मसला है ये वहां के लोगों की ख्वाहिश है, डिमांड है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी डिमांड है और स्ट्रांगली इस डिमांड को लेकर चल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त एक सूबे की तरह रखता है, वहां के अपने इंतजामी उमूर हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोग फौज से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर मैं यहाँ तक कहूँ कि बैरून मुल्क जो है सफीर और एम्बेसियों में बहुत आला ओहदों तक मौजूद हैं और वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की कोई ऐसी बात वहां पर बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह जो है अगर ऐसी एक परसेप्शन क्रिएट करने की हम कोशिश करें कि कहें नहीं वहां पर कुछ इस तरह है। मैंने अर्ज किया कि दो बंदे या तीन बंदे कहें कोई ऐसी बात कर सकते हैं, हाँ जो मुतालिबात कर रहे हैं वो अपने वतन की जुग्राफियाई और नजरियाती टेरिटरी के अंदर रहते हुए मुतालिबात कर रहे हैं, जैसे पंजाब के लोग मुतालिबा करते हैं या सिंध के करते हैं या कराची के करते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ लोड शेडिंग के मसले पे मुतालिबात हो रहे होते हैं, महंगाई के ऊपर मुतालिबात हो रहे होते हैं, इस तरह के मुतालिबात हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि रियासत की मुखालिफत में खड़े होकर कोई मुतालिबा हो रहा हो या उसके अगेंस्ट आकर कोई मुतालिबा हो रहा हो, तो हमें इस चीज को
ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। ऑफिशियल सूबा डिक्लेयर करने में कानूनी पेचीदगी क्या है?
कानूनी पेचीदगी ये है कि ये पूरा खित्ता इंटरनेशनली मैंने अर्ज किया था कि 1948 में जो हुए थे यूएन के इजलासेस हुए थे उसके अंदर इस पूरे खित्ते के अंदर एक रेफरेंडम की बात की गई थी,
डिस्प्यूटेड है कि
जी हाँ इंडिया के भागने की वजह से जो है ये आपने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वक्त आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर और दीगर जो है उनकी जबान से आपने ये बात सुन लिया, जब मुतालिबे ये मुतालिबा सबसे ज्यादा जब जोर पकड़ गया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि डिस्प्यूटेड हैसियत की वजह से हम ये पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये साफ जाहिर है इस चीज से कि एक जो रुकावट सामने है वो अगरचे हम इसको कहें इसको रुकावट नहीं समझते, मेरे ख्याल में मोदी सरकार अगर कश्मीर को लेकर इतना जो है हाई क्रिएट कर सकती है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी रुकावट तो नहीं होनी चाहिए सामने, लेकिन जाहिर है एक रियासत को बहुत सारे पहलू को सामने लेकर चलना होता है और देखना होता है, लेकिन उसके बावजूद ये मतलब ये भी नहीं है कि हम इस मुतालिबे से पीछे हट रहे हैं या हमें पीछे हटना चाहिए, कतई तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए और कतई तौर पर ना पीछे हटना चाहे ना पीछे हटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे ये परसेप्शन क्रिएट नहीं किया जाए कि वहां पर कोई ऐसी मूवमेंट है या वहां पर कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, वहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं है, वो बिल्कुल ही कोई छोटा सा तस्वुर भी मौजूद नहीं है, वो 100% खुद को पाकिस्तानी समझते हैं, पाकिस्तान को अपना वजूद समझते हैं और खुद को पाकिस्तान की वजूद का हिस्सा समझते हैं और रियासत के हर शोबे के अंदर नुमाइंदगी रखते हैं, मौजूदगी रखते हैं, सिवाय है कि वफाक के अंदर जो है पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं रखते। ये एक ऐसा पहलू है जिसका मुतालिबा है वहाँ पर।
ठीक है, हमारे पास तकरीबन 10-12 मिनट मजीद हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। जो फ़िलिस्तीन के ऊपर नई इसराइली जारियत का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके अंदर शहादतें हो रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बुज़ुर्ग मारे जा रहे हैं, किसी की जान व माल की इज़्ज़त व आबरू की जो है वो कोई गारंटी नहीं है, कहीं पर भी कत्लेआम शुरू हो जाता है, बॉम्बिंग शुरू हो जाती है, इसके ऊपर कोई अरब लीग का इजलास, कोई आवाज़ उठती हुई, कुछ ख़ातिर ख्वाह जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। हालांकि बड़े इलाई हैं इस वक्त, तो बड़े बड़े जगहों पर इसराइल के सफारतखाने खोले जा रहे हैं, उनके हाथों में हाथ डाल कर जो है रक्स किए जा रहे हैं, फ़िलिस्तीनियों की अमवात हो रही हैं, उन ताल्लुकात को ही कम अज़ कम इस्तेमाल कर लें, क्यों खामोशी है पूरे अरब हुक्मरानों के अंदर?
देखें, अभी ये बात जो है बड़ी तल्ख है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बहुत सारे अरब ममालिक के हुक्मरानों के लिए कश्मीर अब एक बोझ, माजरत के साथ फलस्तीन अब एक बोझ बन गया है। वो इस सोच में है कि कैसे इस बोझ से छुटकारा हासिल किया जाए, कैसे उसे कंधों से उठा के दूर किया जाए, क्योंकि जमीन में एक हकीकत है और इस हकीकत से इनकार भी वो नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि वो बैकडोर चैनल्स यूज कर रहे हैं, कभी आप यहाँ पे देखते हैं कि उनका कोई वफ्त आ रहा है गाज़ी रियासत का, कभी कहीं और कहें पर कोई यहाँ से किसी वक्त की वहां पर दौरे की बात हो रही है, या कहें पर हम देखते हैं कि कोई मुश्तरक फोरम बन रहा है, या कहें पर तिजारती और या कहें पर अड्डे देने की बात हो रही है, कहें पर जो है फ्लाइट्स के चलाने की बात हो रही है, दौरे हो रहे हैं, इबादतगाहों के नाम पे चीजें खुल रही हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इस तरह की सूरत हाल रवैया इन्होंने बनाया होगा। अगर जब तो सब चीजें साफ खुलकर सामने आ चुकी है, ये एक अलमिया है हमारे लिए कि वाकई जो है एक वक्त वो था कि जिस वक्त ये अरब ममालिक इसको अरब इशू बना के पेश करना चाहते थे और बहुत ज्यादा एड़ी चोड़ी का जोर लगाया गया कि आप फिलिस्तीन को एक अरबी इशू के तौर पे रखें, यानी अरब और नॉन अरब का इशू है, अरबी मुल्क के ऊपर कब्जा हुआ, अरबी जमीन गसब हुई है, अरब लोगों को दरबदर किया गया है, अरब लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, अरब लोगों को मारा, अरब 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 पान अरबिज्म की जो नार एक हद तक जो एक अरसे की पूरी कोशिश होती रही, लेकिन ये मसला वहां से निकल गया और इसने मजहब और दीन के उसको भी फलांग के इंसानियत की बुनियाद पे ये मसला सामने आ गया। और जाहिर है कि इसके पीछे उसी एंजन उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो एंजन है उस एंजन का किरदार सबसे ज्यादा है, इसके अलावा कि खुद फलस्तीनियों की जद्दोजहद है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनकी जो इस्तकामत है वहां पर, उनका डट जाना है, उनकी अपने हक के लिए अपने जायज जमीन जिस पर गस्ब हुआ है, कब्जा किया गया है, उसे छुड़ाने की जो कोशिश है, ये सारे अवामिल और ये सारे अनासिर इकट्ठे जब हो जाते हैं तो फिर जो है फलस्तीन एक जीता जागता फलस्तीन के तौर पर सामने नजर आता है। आप देखते हैं कि कुर्बानियां फलस्तीन 70 साल से कुर्बानियां दे रही हैं, दे रहे हैं, वहां की आवाम भी दे रही है, और हर कुछ अरसे के बाद वक्फे वक्फे से जारियत और तशद्दुद का जो सिलसिला है गासिब फोर्सेस की तरफ से वो जारी है। हालिया भी अभी जो हुआ है उसके अंदर भी यही है कि देखें वक्फे वक्फे से अभी वहां इलेक्शन हो गए हैं, उनके अंदर एक गासिब रियासत ने नाम निहाद इलेक्शन करा दिए और अब वो ये है कि किसी एक पहलू पे वो इलेक्शन बैठ नहीं पा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा ख्वाब देख के आना चाह रहे थे लेकिन उनको लग रहा है कि उनके लिए ये ख्वाब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। तो अब उसके उसके लिए मुख्तलिफ बहाने तलाश किए जा रहे हैं कि कैसे जो है अपने रियासत के अंदर जो एक मायूसी किसी कैफियत उस गासिब रियासत में फैली है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो जाहिर है कि आसान तरीन जो एक रास्ता है वो ये है कि फलस्तीनियों के ऊपर दोबारा से जुर्म तशद्दुद किया जाए और मजीद उनके इलाकों पे कब्जा किया जाए ताकि जो है जो अंदरूनी जो सूरत हाल है उस वो जो है उनकी तवज्जोहात डाइवर्ट हो जाए उस तरीके। लेकिन इस दफा आपने देखा कि एक लिमिटेड जाहिरियत से ज्यादा जुरात नहीं की जा सकी, इसलिए कि मुकाबला व मिसल के लिए फलस्तीनी भी सामने आ गए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने जवाब दे दिया,
450 रॉकेट फिलिस्तीन से फायर हो गए उधर, ये उनके लिए बड़ी अचंभे की बात थी।
इसमें कोई शक नहीं है, ये जब तक कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। एक वक्त ये था कि बस करो, बैठो, बातचीत करो, डायलॉग करो, डायलॉग करो, डायलॉग करो। जब भी ऐसी सुरताल होती थी तो अरब लीग आती थी, एक इजलास बुलाती थी जिसमें वो बैठते थे और बड़ी जो है फलसफियाना बातें करते थे, और उसके बाद वो बगैर किसी मजम्मती करारदाद के, अक्सर जो है आप अरब लीग की हिस्ट्री निकाल के देखें तो जब भी इस फलस्तीन की इशू पे बैठे हैं तो मजम्मती करारदाद या शर्मीली किस्म की मजम्मती करारदाद होती थी, बड़े शर्मीले हुए अंदाज में मजम्मत की जाती है, और दोनों को फरीकेन को फरीक बना के कभी पेश किया जाता था गासिब को। तो ये अब वो भी नहीं हो रहा है, अब तो वो चीज वो इजलास होने भी बंद हो गए जो नुमाइशी किस्म के इजलास होते थे, अब तो बिल्कुल एक खामोशी है और लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने शुरू में कह दिया कि ये एक बोझ बनता जा रहा है उन लोगों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए, वो चाहते हैं कि इससे छुटकारा हासिल करें। इसीलिए सदी की डील की जो कोशिश की गई और नाकाम हो गई, उसका जो है उन्होंने फिर उसका नाम दिया कि नहीं ये एक इकोनॉमिकल और डेवलपमेंट फोरम था, ये पहली किस्त थी, पहला जो है एक स्टेप था, मुख्तलिफ बहाने दिए, हालांकि वो एक पूरा प्लान था लेकिन वो प्लान प्रैक्टिकल हो नहीं पाया फलस्तीनियों की जरूरत की वजह से। और हम इसीलिए कहते हैं कि मोदी का प्लान भी नाकाम होगा कश्मीर में अगर वो इस्तेकामत दिखाएंगे। अगर उन्होंने इस्तेकामत दिखा लिया तो ये सारे प्लान नाकाम हो जाएंगे, जैसे कि फलस्तीनियों ने नाकाम बना दिया उसको।
सही,
जो मुजाहमती ब्लॉक है वो उनके साथ खड़े हैं और मजबूत पोजिशन में खड़े हैं। वो पहले वाली सुरताल नहीं कि हमेशा एक मजलूमियत का मरसिया पढ़ा जाता था, वो सुरताल नहीं है। आज बहादुरी के किस्से पढ़े जाते हैं, आज जो है बहादुरी के रजिज पढ़े जाते हैं। वो सुरताल नहीं रही कि हमेशा जो है सीना जो है मजलूम का हो और जालिम के हाथ में खंजर हो। अब ये सुरताल ऐसी है कि अब जालिम के खंजर को छीन के मजलूम उसके सीने में भी बेबस करता है, तो सुरताल बहुत
तब्दील हो चुकी। अच्छा, आखिरी आखिरी चंद मिनट मेरे पास मौजूद हैं। हर्षद शाबी को न्यूट्रलाइज करने के ऊपर नाकामी हुई, वहाँ पर जो पेनिट्रेशन की उसके अंदर नाकामी हुई, ईरान के अंदर नाकामी हुई, लबनान के अंदर जो है वो नाकामी हुई, पूरी कोशिश की कि हिज़्बुल्लाह को इंगेज किया जाए उसके अंदर नाकाम हुए ताकि उनकी तवज्जोहात इसराइल के साथ जो बॉर्डर है उस पर से हट जाए, शाम पे से हट जाए। थोड़ा सा देखेंगे हम शाम के अंदर ऑपरेशन थोड़ा सा तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। शामी फोर्सेस ने भी इसराइल की तरफ जो है वो ख़बरों में था कि रॉकेट फायर किए हैं जिसको वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिजा में तबाह कर दिए हैं, मगर अब ये ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया, मकावमत के झोली में आ गिरा है। आप क्या देखते हैं वहाँ से, जो अमरीकी ऑक्यूपाइड फोर्सेज हैं जो जिनकी तादाद बहुत कम है मगर वो तेल के मंबे के ऊपर हैं, वो कब तक वहाँ से इनखिला उनका होगा, आसानी से होगा या जंग व जदल की कैफियत देखते हैं?
मेरे ख्याल में वो फोर्सेस वहाँ पे इस तरह बैठी हुई हैं जैसे कि कोई आदमी फर्ज करें कि एयरपोर्ट में अपने सामान को पैक करके अनाउंसमेंट के इंतजार में इंतजार कर रहा होता कि कब अनाउंसमेंट हो कि मैं आगे जो है बढ़ जाऊं फ्लाइट की तरफ। तो वहाँ जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में बैठी हैं क्योंकि उन्हें ग्राउंड में नीचे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती जहां वो पांव जमा सकें और पांव जमा के रह सकें। और वो काफी पहले इनकला करना चाह रहे थे, आज से 2 से 2.5 माह 3 माह पहले इनकला करना चाहते थे। वो तो बीच में अर्दोगान साहब को मेरे ख्याल में इंतहाई एक गलत वक्त में बोंडी हरकत उन्होंने की, और कुर्द जो वहाँ पे फोर्सेस हैं वो इतनी ज्यादा उनको उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और वहाँ कूदना जरूरी समझा, और उसकी वजह से फिर उन्हें भी थोड़ा सा जो है होल्ड ऑन करना पड़ा चीजों को, क्योंकि ये एक हकीकत है वो वहां नहीं रह सकती हैं। देखिए जितने प्यादे थे वो सब मारे जा चुके हैं, जितना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया था उनके प्यादों के कब्जे में था, हलब जैसा इतना, अलीपो जैसा बड़ा शहर था, तरतूस जैसे बड़े बड़े शहर उनके पास थे, हम्स जैसे और कितने बड़े बड़े, ये पूरी पट्टी जो मशरकी या शर्की शाम जिसको कहते हैं ये पूरी पट्टी जो है उनके पास थी। अब तो शाम की जो फोर्सेस है वो तुर्की के बॉर्डर में बैठी हुई हैं, वही कुर्द इलाके जहाँ पे उन्होंने जो है पीवाईडीज और मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेज वहां पे बनाई हुई थी उसके आधे से ज्यादा हिस्से पर बैठे हैं। 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो अमेरिकन फोर्सेस बैठी हैं शाम की फोर्सेस से। तो अब ऐसी एक बिल्कुल एक बंद गली में जाके कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, कोई वहां पे फिर ज्यादा देर पांव गाड़ के बैठ भी नहीं सका।
रूस के
सामान पैक करके बैठे हैं।
रूस के किरदार को क्या देखते हैं, क्योंकि उनका शाम के अंदर बहुत अमल दखल है, तो क्या अमेरिका से कोई उनकी इस हवाले से झड़प देखते हैं इन फ्यूचर जो है वो, या ये वहाँ से जिल्लत के साथ इनकला करेंगे जो हमेशा अमेरिका की तारीख रही है?
किसी भी हाल में अमेरिकी रूस के साथ टकराव नहीं करेंगे इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरे मगरबी एशिया या मशरिक वस्ता के अंदर किसी भी हाल में वो तसादुम वहां पर न सिर्फ रूसियों के साथ नहीं चाहेंगे बल्कि वो मुजाहमती ब्लाक के साथ बराह रास्त तसादुम शुरू से बचते रहे हैं, ओबामा के दौर से वो बचते रहे हैं और अभी तक उनका ये, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा छोटा सा भी तसादुम जिसको हम कह सकते हैं बराह रास्त तसादुम, पहले जो है वो पिटुओं के जरिए से तसादुम होता रहा है, खुद फोर्सेस जो असल फोर्सेस हैं वो आपस में आमना सामना नहीं किए हैं उन्होंने, वो उस वक्त नहीं कर सके हैं जब आधे से ज्यादा शाम पर उनके पिटुओं ने उधड़ मचाया हुआ था वहां पर और कम से कम अहम अहम जगहों पे उन्होंने जो है एक खलबली मचाई हुई थी, एक क्लबशार था, उस वक्त ये जुरत नहीं कर सके। इस वक्त तो एक ऐसे डरबे के अंदर वो फंसे हुए हैं, वहां पे ये जुरत हो ही नहीं सकती, वो भी बराह रास्त रशियन फोर्सेस के साथ, वो तो मुमकिन ही नहीं, बल्कि वो तो शाम की फौज के साथ टकराव से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं उनकी से पता चलता है कि वो 24 घंटे में एक मैसेज वहां से डिलीवर करते हैं कि यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं सफेद झंडी वो वहां से दिखा रहे होते हैं कि देखें हम कुछ यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं करने जा रहे हैं, आपने हमारी तरफ कोई पेशकदमी करनी नहीं है, हम सिर्फ
अच्छा बार बार सिर्फ एक मिनट रह गया मेरे पास, बार बार ये खबरें भी आती है कि वहां से अड्डे तेजी के साथ अफगानिस्तान की तरफ मुंतकिल की जा रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है?
देखें बहुत सारे अफराद जो कि जो कहते हैं कि दहशतगर्दों के जो मेन लोग थे की पर्सन थे उनकी शूटिंग तो ये खबर पहले से शुरू हो चुकी थी और अभी जाहिर है उसमें तेजी भी है, तुर्की की तरफ से जो कुछ थोड़े बहुत बयान आते रहे हैं और अभी अशरफ गनी का भी एक बयान कुछ देर पहले नजर से मेरी गुजरा कि वो कह रहा था कि दूसरे ममालिक को ये हम हक नहीं देंगे कि वो जो है दहशतगर्दों को वहां पे बसाएं, तो इससे भी पता चलता है और तुर्की की तरफ से भी ये जो कहा जा रहा है कि उनकी फैमिलीज हैं तो उनको हम फिर छोड़ देंगे तो वो जो यूरोप से आए हैं वो उधर जा सकते हैं, जिन जहां जहां से आए हैं उधर आ सकते हैं, यानी इनडायरेक्टली वजह से धमका रहे थे कि आप अगर हमें कार्रवाई करने नहीं देते या हमें हमारे एजेंडे को पूरा करने नहीं देते हैं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं और हम ये भी कर, उससे पता चलता है कि वहां से जो इनखला है वो ऑलरेडी वो कर चुके हैं और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वहां पर तो उसे भी वो शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रगुजार हैं क़िबला, बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून है कि आपने अपना कीमती टाइम हिदायत टीवी को दिया, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका भी और उम्मीद है कि हिदायत टीवी की हिदायत का सिलसिला इंशाल्लाह की इसी तरह जारी वसारी रहेगा।
जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। जी नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे इटली से जर्नलिस्ट मौलाना आबिद हुसैन साहब को और आपने जो है वो हमारा मौजू मुस्लिम उम्मा की मजबूत सूरत हाल इसके ऊपर रोशनी डाली। कल से हमने इस सिलसिले को का आगाज़ किया क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाहें जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये, इसके ऊपर जाम जो है वो अपडेट्स की एक बहुत ज़रूरत थी अयाम अज़ा के बाद कि इन तमाम चीज़ों को आपको मुतला किया जाए कि क्या मामलात हैं और क्या नहीं, क्योंकि जो मगरबी मीडिया आपको दिखा रहा है वो चीज़ें नहीं हैं, हकायक ज़मीनी हकायक जो है कुछ और है। हिदायत का सिलसिला हिदायत की स्क्रीन से इंशाल्लाह जारी वसारी रहेगा। हमारी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कल अब 5:30 बजे UK टाइम से होगी। इजाज़त दीजिए, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हिदायत के साथ।